स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 11 अक्टूबर और दिन मंगलवार। बीबीसी को मिली जानकारी के अनुसार सऊदी अरब ने आपसी बातचीत में यमन में जनाजे पर हुई बमबारी की बात स्वीकार कर ली है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने यमन पर हुई बमबारी की स्वतंत्र जांच की मांग की है।
Parties cannot hide behind the fog of this war. A man-made catastrophe is unfolding before our eyes.
प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ में मनाएंगे दशहरा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ली चुटकी।
चुनाव बिहार में होता तो शायद बिहार में रावण जलता, वहाँ पर लोग जाते। मैं समझता हूँ रामलीला और इन त्योहारों को तो दूर रखना चाहिए।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। सऊदी अरब ने निजी तौर पर माना है कि शनिवार को यमन में एक जनाजे पर उसकी गठबंधन सेना के एक विमान ने बमबारी की थी। बीबीसी को यह जानकारी मिली है। हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 140 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 500 से ज़्यादा घायल हुए हैं, जिनमें से कई आम नागरिक भी हैं। यमन में इस हमले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। कोलंबिया की सरकार और देश के सबसे बड़े बागी गुट नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी ELN ने ऐलान किया है कि इस महीने के आखिर में वो शांति वार्ता शुरू करेंगे। बातचीत का पहला चरण 27 अक्टूबर को कोलंबिया के पड़ोसी देश इक्वाडोर की राजधानी कीटो में आयोजित होगा। कोलंबिया के राष्ट्रपति ख्वान मैनुएल सांतोस ने मांग की है कि बातचीत शुरू होने से पहले लिबरेशन आर्मी सभी बंधकों को रिहा करे। ELN के कब्जे में अब भी कई बंधक हैं जिन्हें उसने फिरौती के लिए अगवा किया था। हालांकि पिछले 2 सप्ताह के दौरान उसने कुछ बंधकों को रिहा भी किया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सबसे वरिष्ठ सांसद और निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष पॉल रायन ने कहा है कि राष्ट्रपति पद के पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन और बचाव अब वो नहीं करेंगे। रायन ने 11 साल पुराने एक वीडियो के सामने आने के बाद ट्रंप के चुनाव प्रचार से पीछे हटने का फैसला किया है। इस वीडियो में ट्रंप महिलाओं के प्रति अश्लील बातें करते सुनाई पड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह शुक्रवार को इस वीडियो के सामने आने के बाद से ट्रंप की खासी आलोचना हो रही है। रविवार रात राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी बहस में भी इस वीडियो का मुद्दा छाया रहा। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक पेंस ने ट्रंप के प्रति अपना समर्थन दोहराया और कहा,
You know, as I said last weekend, I don't condone what was said, and I spoke out against it.
मैंने पिछले सप्ताह ही कहा था कि ट्रंप वीडियो में जो कह रहे हैं उसका समर्थन किया ही नहीं जा सकता। मैंने तब भी उनके खिलाफ कहा था, लेकिन साथ ही मैं माफ़ कर देने में यकीन रखने वाला आदमी हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात अपनी बात पूरी ईमानदारी से कही और अमरीकी जनता से माफ़ी मांगी। उन्होंने दिखा दिया कि वो दिल से कतई एक बुरे इंसान नहीं हैं और इस बात के लिए मुझे गर्व है। मैं पूरी मजबूती से डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा जताते ये थे रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक पेंस। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बेहद गुस्से की अवस्था में कड़ा व्यायाम करना जानलेवा साबित हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध से ये बात सामने आई है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जनरल में प्रकाशित किए गए इस शोध के मुताबिक जब आप गुस्से में हों या परेशान हों तो ऐसी स्थिति में कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। बीबीसी समाचार।
एक दफा फिर स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 11 तारीख और दिन मंगलवार, और वैसे आज दशहरा का भी दिन है, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं 2 दिन पहले यमन की राजधानी सना में हुई हवाई बमबारी के बारे में। बीबीसी को मिली जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब ने निजी तौर पर या यूं कहें कि आपसी बातचीत में इस बात को मान लिया है कि उसकी गठबंधन सेना के एक विमान ने ही यमन में एक जनाजे पर बम बरसाए थे। हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 140 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। یہ دو دن پہلے کی بات ہے جب یمن کی راجدھانی سنا میں یہ گھٹنا گھٹی تھی۔ اب سنیکت راشٹر مہا سچیو بان کی مون نے بھی مانگ کر دی ہے کہ اس حملے کی سوتنتر جانچ کی جائے۔ بی بی سی سنواداتاؤں کی بھیجی رپورٹ کا سار سنیے پربھات پانڈے سے۔
دو سالوں کے اندر یمن میں ہوا سب سے بھیانک حملہ، راجدھانی سنا میں ایک جنازے پر ہوئی بموں کی برسات جس میں نشانہ تھے ہوتی ودروہی، لیکن ساتھ ہی مارے گئے کئی عام ناگرک۔ ایک کے بعد ایک ہوئے کئی حملوں کے بعد کئی بچوں سمیت 140 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے اور 500 سے بھی زیادہ گھائل۔ سعودی عرب نے پہلے تو اس بات سے انکار کیا کہ اس کی گٹھ بندھن سیناؤں کا اس حملے میں ہاتھ تھا، لیکن بعد میں انوپچارک طور پر مانا کہ پہلے حملے کے بعد جب راحت کرمی گھائلوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب جس ویمان نے بم برسانے شروع کیے وہ اس کی گٹھ بندھن سینا کا تھا۔ برٹن نے سعودی عرب سے مانگ کی تھی کہ وہ اس ہوائی حملے کی جانچ میں حصہ لے۔ سعودی عرب اس بات کے لیے مان بھی گیا ہے۔ اس بیچ یمن میں سعودی گٹھ بندھن سیناؤں اور انتراشٹریہ جگت کے خلاف بڑے پیمانے پر ویروھ پردرشن ہو رہے ہیں اور اس حملے کی سوتنتر جانچ کی مانگ کی جا رہی ہے۔ سنیکت راشٹر کے مہا سچیو بان کی مون نے بھی نیو یارک میں ان حملوں کی کڑی آلوچنا کرتے ہوئے کہا،
پارٹیز کین ناٹ ہائیڈ بیہائنڈ دی فوگ آف دس وار، ا مین میڈ کیٹاسٹروفی از انفولڈنگ بیفور آور آئز۔
युद्ध की आड़ में आप इस तरह के अपराध से बच नहीं सकते। हम अपने सामने मानव निर्मित विनाश को देख रहे हैं। इस तरह के अपराधों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये थे बान की मून के शब्द। वहीं अमरीका भी इस बात से चिंतित है कि इस हमले के संबंध में उसे युद्ध अपराध का सामना करना पड़ सकता है। براک اوباما پرشاسن سعودی گٹھ بندھن سیناؤں کو لگاتار ہتھیار مہیا کرا رہا ہے۔ انتراشٹریہ قانون کے تحت اس لیے امریکہ پر بھی یدھ اپرادھ کا معاملہ چل سکتا ہے۔ یمن میں انتراشٹریہ سمرتھن پراپت سرکار اور ہوتی ودروہیوں کے بیچ مارچ 2015 سے سنگھرش چل رہا ہے۔ اس میں اب تک 4125 عام ناگرک مارے جا چکے ہیں اور 7000 سے بھی زیادہ گھائل ہو چکے ہیں۔
یہ تھے پربھات پانڈے جو بتا رہے تھے کہ بی بی سی کو ملی ایک جانکاری کے مطابق سعودی عرب نے قریب قریب یہ بات مان لی ہے کہ سنا پر جو بمباری ہوئی تھی وہ سعودی گٹھ بندھن کے ویمان سے کی گئی تھی۔
75 ورشوں سے آپ کے ساتھ
بی بی سی ہندی ریڈیو،
سنیے اپنے موبائل پر
اور آن لائن بھی۔
اور اب بات بھارت پرشاست کشمیر کی۔ بھارت پرشاست کشمیر کے پامپور میں آنٹرپرینور ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ہاسٹل میں چھپے چرم پنتھیوں اور سرکشا بلوں کے بیچ مٹ بھیڑ پچھلے کئی گھنٹوں سے ادھک سمے سے جاری ہے۔ چرم پنتھیوں اور سرکشا بلوں کے بیچ سوموار صبح کو شروع ہوئی مٹ بھیڑ میں سینا کے ایک جوان اور پولیس کے ایک جوان اب تک گھائل ہوئے ہیں۔ اس بارے میں اور تازہ جانکاری کے لیے سیدھے چلتے ہیں سری نگر، جہاں بی بی سی کے ہمارے ساتھی موجود ہیں ریاض مسرور۔ ریاض، یہ بتائیں کہ کیا اب تقریباً 20-22 گھنٹے ہو چکے ہیں، ابھی لیٹسٹ سب سے تازہ کیا جانکاری ہے؟
جی نہیں، 22 نہیں بلکہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، کیونکہ کل صبح 6:30 پہلا فائر آیا تھا جو آگ بجھانے والی ٹیم ہوتی ہے، انہوں نے رپورٹ کیا تھا۔ تو کافی رک رک کے دن میں بھی کل جو ہے وہ گولی باری ہوتی رہی، اور رات میں بھی دھماکوں کی آوازیں لوگوں کو سنائی دیں، کیونکہ جو رننیتی ہے آرمی کی وہ بہت دھیمی گتی سے آپریشن کو سماپت کرنا ہے، اور ملیٹنٹس نے بھی جو ہے ایک نئی رننیتی کے تحت اپنا ایمونیشن بچا کر رک رک کے گولی باری جو ہے وہ کل رات کو کی ہے۔ تو اس طرح سے ایک نئی اسٹریٹجی کے تحت آرمی جو ہے جانی نقصان کو بچاتے ہوئے کسی آرمی یا سرکشا کرمی کی جان گنوائے بغیر۔
معاف کریے گا، لگتا ہے کہ سری نگر سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے۔ ہم دوبارہ کوشش کریں گے ریاض سے سمپرک سادھنے کی۔ بہرحال اگر ان سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا، تو فی الحال اب سری نگر سے چلتے ہیں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ۔ پردھان منتری نریندر مودی آج لکھنؤ میں ہوں گے۔ وہ لکھنؤ میں دشہرہ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। विपक्ष के नेता इसे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बता रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दशहरा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की मौजूदगी को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पूरी बहस पर एक रिपोर्ट सुना रहे हैं हमारे साथी वात्सल्य राय।
हम आने वाले दिनों में विजयादशमी मनाने वाले हैं। यह विजयादशमी देश के लिए बहुत खास है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रविवार को हुए एक कार्यक्रम में ये बयान दिया तो देर तक तालियां बजती रहीं। प्रधानमंत्री ने जो संकेत देने की कोशिश की, कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया। इस बार विजयदशमी का कार्यक्रम एक और मायने में खास है। प्रधानमंत्री इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विजयदशमी के कार्यक्रम में शरीक होंगे। बरसों से परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री दिल्ली के दशहरा कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विरोधी इस बदलाव के संकेतों को पढ़ने की कोशिश में हैं। उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस कार्यक्रम का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे लेकर कहा,
चुनाव बिहार में होता तो शायद बिहार में रावण जलता, वहां पर लोग जाते। चुनाव है, मैं समझता हूँ रामलीला और इन त्योहारों को दूर रखना चाहिए।
प्रधानमंत्री लखनऊ की जिस रामलीला कमेटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वहां कार्यक्रम की थीम चरमपंथ की समाप्ति रखी गई है। विपक्षी दलों की राय है कि भारतीय जनता पार्टी दशहरा कार्यक्रम के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश में है। कांग्रेस के सांसद पीएल पुनिया कहते हैं कि ऐसी कोशिश को सही नहीं कहा जा सकता।
देखिए, प्रधानमंत्री हैं, देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन त्योहार के अवसर पर लोग बाग उम्मीद रखते हैं देश की राजधानी में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। अगर वहीं नहीं है तो फिर अपने लोकसभा क्षेत्र में जाने की सोच सकते थे। लखनऊ में आ रहे हैं और जाहिर है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये राजनीतिक ये विजिट है, कोई त्योहार से संबंधित नहीं है, और वो त्योहार के समय पे ये राजनीतिक विजिट किसी भी तरह से लोग मुनासिब नहीं समझते हैं।
वहीं भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के आरोपों को पूरी तरह गलत बताती है। पार्टी का कहना है कि पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो इस तरह के कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लखनऊ के कार्यक्रम के आयोजन में अहम जिम्मेदारी निभा रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा कहते हैं,
आज ये मंतव्य इसलिए आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि कांग्रेस, सपा और बसपा महत्वहीन हो चुके हैं और लोकसभा में बुरी तरह पराजित हुए हैं। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं और उनका उद्देश्य जितना भी सकारात्मक क्यों ना हो, उसमें नकारात्मक भाव तलाश के प्रधानमंत्री को आरोपित करने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि उनकी ये सोच गलत है। ये अराजनैतिक कार्यक्रम है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा आतंक और अहंकार के प्रतीक रावण के वध की लीला का दृश्यांकन करेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री, केवल इतने ही तक ये कार्यक्रम सीमित है।
भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री जिस मंच पर होंगे वो राजनीतिक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी महाभारत के योद्धा मानते हैं कि संकेतों की राजनीति में रामलीला का मंच अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में खासा फायदेमंद हो सकता है।
ये थे वात्सल्य राय। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मोदी के लखनऊ के दशहरा कार्यक्रम में हिस्सा लेने को राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जहां वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अखिलेश यादव की बात सुनी, लेकिन क्या वाकई इस कार्यक्रम को राजनीति से अलग रखकर देखा जा सकता है? हमारे साथी वात्सल राय ने यही सवाल पूछा लखनऊ स्थित वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद प्रधान से।
नहीं, पूरी तरीके से राजनीति है, वरना क्या पड़ी थी एकदम से प्रधानमंत्री को लखनऊ आकर के दशहरा मनाने की। और इसके पीछे खेल ये है कि हमेशा वहाँ पे जो लीला समिति है वो हमेशा से बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं वो, और उनको ये मौका पाकिस्तान पे जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं उसका बेनिफिट बड़े तरीके से रावण के नाम पे, और ऑलरेडी देश के डिफेंस मिनिस्टर हनुमान और रावण और राम की ये रेफरेंसेस दे चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेके। तो ये मौका उन्होंने ढूंढा है कि बड़े सटल तैसे, जैसे मोदी करते हैं, मोदी का जो तरीका है वो बड़े महीन मार मारते हैं, तो वो महीन तरीके से अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। ना उसको ऊपरी तौर पे कम्युनल शक्ल देते, वरना कोई कारण नहीं था कि दशहरे के दिन वो यहाँ आके रावण वध देखें।
भारतीय जनता पार्टी के अगर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बात करें तो बीजेपी अभी सबसे बाकी दलों के मुकाबले पीछे नजर आती है। अभी उसके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, पार्टी में भी फूट की बात सामने आती है, तो क्या इस तरह के सांकेतिक कार्यक्रमों से कुछ फायदा मिलेगा पार्टी को?
जी मेरा ख्याल ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है इनका। देखिए जगह तो चुन ली है रामलीला ग्राउंड, उसके पीछे एक और भी इनका राज छुपा हुआ लगता है। इन्होंने जितनी लास्ट मिनट पे डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे दशहरे वाले दिन, वो उसके पीछे ये भी है कि इनको खतरा था कि ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पाएंगे, और खासतौर से जब ये एक रैली होने जा रही है मायावती की रैली के दो रोज बाद। मायावती की रैली इतनी विशाल थी, जो मैंने खुद मायावती के ही किसी रैली में इतनी भीड़ नहीं देखी, तो उससे जो है ये सारे अपोजिशन पार्टीज वाले काफी घबराए हुए हैं। दूसरा वो जो उन्होंने खुल के भी कहा मुसलमानों को, ये कहना कि देख लो हमारी ये ताकत है, हम ही हैं जो आ सकते हैं पावर में, तो ये चीजें देखते हुए वो जो मैसेज दे रहे हैं इस वक्त बीजेपी को, ये कहने को जरूर जाएगा ये जो मैदान है जहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं ये मायावती वाले मैदान का 1/5 भी नहीं है, तो कहने को ये हो जाएगा साहब मैदान भरा हुआ था, लेकिन नंबर्स में बहुत फर्क होगा। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि मैसेज ये इलेक्शन के लिए देने आ रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं दशहरे को अपने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा उठाने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए।
और इसे लेकर जो विपक्ष के बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान का बचाव किया, तो आप क्या कोई गठजोड़ बनने का संकेत देखते हैं यहाँ?
देखिए जहाँ तक गठजोड़ का सवाल है ये तो सिर्फ पोस्टरिंग है। गठजोड़ कोई भी ये पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त प्री इलेक्शन तो नहीं करने जा रही, ना मायावती किसी के साथ करेगी, ना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इलेक्शन प्री इलेक्शन तो नहीं होता दिखता, पोस्ट इलेक्शन हो सकता है। ये सपोर्ट करते रहेंगे इस तरह की कई बात पहले भी बोल चुके, एक बार और भी इन्होंने अखिलेश यादव आजकल काफी वो दिखाने में लगे हैं कि उनकी राहुल गांधी से बहुत अच्छी है, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ करी है। एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा कि जो जहां तक पॉलिटिकल बेनिफिट और क्रेडिट लेने की बात है, ये बड़ा नेचुरल है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है हर एक मिलिट्री एक्शन का बेनिफिट उस गवर्नमेंट को मिलता है। एक पॉइंट याद रखिए कि कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क के ऊपर बगैर पॉलिटिकल विल के नहीं हो सकती।
लखनऊ से ये थे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद प्रधान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। संघ के मुख्यालय नागपुर में होने वाले सालाना कार्यक्रम में आज स्वयंसेवक बदले अंदाज में दिखेंगे। वजह यह है कि संघ की यूनिफॉर्म बदल गई है। विजयदशमी समारोह में होने वाला संघ प्रमुख के भाषण भी उत्सुकता की वजह बनता रहा है। संघ विचारकों के मुताबिक इस भाषण के जरिए संघ प्रमुख देश की समसामयिक समस्याओं का समाधान सुझाते हैं। सुनिए एक रिपोर्ट वात्सल्य राय से।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयदशमी पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम में करीब 7,000 स्वयंसेवक नए अंदाज में दिखेंगे। साल 1925 में बने इस संगठन की यूनिफॉर्म, जिसे संघ के स्वयंसेवक गणवेश कहते हैं, एक बार फिर बदल गई है। इस बदलाव को लेकर संघ के प्रचार प्रमुख डॉक्टर मनमोहन वैद्य कहते हैं,
ये हाफ पैंट के बदले खाकी निकल रही थी, उसके बदले में एक कॉफी ब्राउन कलर के फुल पैंट आ रही है, और जो सॉक्स का रंग जो पहले खाकी था उसके बदले में डार्क ब्राउन कलर का सॉक्स है, ये चेंजेस हो रहे हैं।
ये पहला मौका नहीं है जबकि संघ की यूनिफॉर्म में बदलाव हुआ हो। इस बार भी बदलाव की चर्चा लंबे समय से थी, लेकिन इसके लिए विजयदशमी को ही क्यों चुना गया, इस पर डॉक्टर वैद्य कहते हैं,
संघ में गणवेश का बदल पहली बार नहीं हो रहा है। 90 साल की यात्रा में समय समय पर गणवेश में बदल हुए हैं, तो जैसी आवश्यकता महसूस होती है और समय बदलता है उसके अनुसार चेंजेस होते हैं, ये चौथा प्रकार का बदल है। और विजयदशमी क्योंकि संघ का स्थापना दिवस है और सर्वाधिक संख्या में गणवेश में स्वयंसेवक देश भर में इसमें कार्यक्रम करते हैं, और इसलिए इस दिन को चुना गया है।
संघ के लिए विजयदशमी समारोह का सबसे अहम हिस्सा होता है संघ प्रमुख का भाषण। संघ विचारक राकेश सिन्हा के मुताबिक विजयदशमी के दिन सरसंघ चालक का भाषण संगठन के लिए कम, राष्ट्र के लिए अधिक होता है। वो कहते हैं कि संघ प्रमुख राष्ट्र की समसामयिक समस्याओं को सामने रखते हैं और उसका समाधान सुझाते हैं।
जब एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन व्यापक रूप ले लेता है, उसकी ताकत बढ़ती है, तो ये नागरिकों का संगठन, ये सन्यासियों का संगठन नहीं। नागरिक वे होते हैं जिनको राजनीतिक रूप से उनकी एक अपनी दृष्टिकोण होता है, तो स्वाभाविक है संघ की अपनी एक राय होती है देश की राजनीतिक परिस्थिति पर। लेकिन इस उद्बोधन में व्यापक दृष्टिकोण से एक स्टेटमेंट की तरह सरसंघ चालक जी देश को सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का आभास कराते हैं। उसका कोई संकीर्ण अर्थ नहीं होता है।
राकेश सिन्हा का कहना है कि आज संघ अपनी ताकत और तर्क से देश का एजेंडा तय करता है। उनके मुताबिक ये संगठन की ताकत ही है जिसकी वजह से संघ की गणवेश में बदलाव आता है तो भी महीनों तक विमर्श होता है। आज उत्सुकता इस बात की होगी कि विमर्श की दिशा क्या रहती है।
ये थे वात्सल्य राय।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब बात करते हैं अखबारों की। अखबार के साथ मौजूद है हमारे साथी प्रभात। प्रभात, आपके अखबार क्या कुछ खास कह रहे हैं आज?
जी, अखबारों में दशहरा से संबंधित खबरें और एनएसजी में भारत के प्रवेश को लेकर चीन का ताजा बयान।
एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप
को लेकर, भारत के प्रवेश को लेकर चीन का ताजा बयान, ये सुर्खियां बनी हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक अहम खबर जिसके मुताबिक भारत में मोटे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस पर भी, इस मामले में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से ज़्यादा ख़राब है। अखबार के मुताबिक भारत के सिर्फ 57% पुरुष और 52% महिलाओं का वज़न ही ठीक है। अखबार के मुताबिक चीन और अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा मोटे लोग हैं और इसकी वजह से भारत में लोगों को दिल की बीमारी होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है।
मैंने भी शुगर बंद कर दी है, चाय भी मैं बगैर चीनी के पीता हूँ।
जी, बहुत अच्छी बात है। पंजाब में सबसे ज़्यादा मोटे लोग हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में ही एक और खबर छपी है जिसके मुताबिक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री को लेकर चीन का ताज़ा बयान सुर्खी बना है। अखबार कहता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो कि ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाले हैं, उनसे ठीक पहले चीन ने कहा है कि वो एनएसजी में भारत के प्रवेश के सिलसिले में आगे बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही चीन ने यह भी संकेत दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को जो अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है वो राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है। यानी कि एक तरफ भारत के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव बयान तो दूसरी तरफ उसको न्यूट्रलाइज भी कर दिया चीन ने। इसके अलावा बात करें इंडियन एक्सप्रेस की, तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर खबर छापी है कि राजस्थान में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए राज्य का क्रिकेट एसोसिएशन मोबाइल पिचों का इस्तेमाल करेगा। उसके लिए ब्रिटेन से 28 सिंथेटिक पिचें मंगाई गई हैं। जी,
बहुत शुक्रिया प्रभात आपका अखबारों की समीक्षा का। और अब राजस्थान से एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में सैकड़ों साल पुराना पारंपरिक गदर्भ मेला गधों को तरस गया है। गधे अपने ही घर में बेगाने हो गए। गधों की घटती संख्या को लेकर आयोजक भी परेशान है। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
बावगढ़ बंध्या के मेला मैदान में गधे ने देर तक अपनी वेदना के स्वर मुखरित किए, गोया वो अपनी बेबसी और बेकदरी पर आंसू बहा रहा हो। लेकिन घोड़ों की इस भीड़ में किसी ने भी गर्दवराज का यह रुद्र नहीं सुना। मेला मैदान पर बने प्राचीन देवी मंदिर के प्रति गधा पालकों की गहरी आस्था है। मंदिर के पुजारी प्रदीप स्वामी इस बदलते मंजर पर कहते हैं,
पहले यहाँ पे मेले में गधे जाता थे, हर आदमी के पास रहता था गधा, गरीब के पास भी और जो मजदूरी करता था उसके पास भी। तो उनके क्या जो धंधे गधे के, वो खत्म हो गए, घोड़े बढ़ गए, घोड़े और घोड़ियां, इनका धंधा बढ़ गया, उनका कम हो गया। मेले का ये जो ग्राउंड है ये तो फुल रहता ही रहता था और ये गांव के आसपास जितने खेत है वो भी फुल रहते, अब गधे नहीं रहते।
लोकतंत्र तो संख्या का खेल है। घोड़ों की बढ़ती संख्या से परेशान गधे अब यह भी नहीं पूछ सकते कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कड़ी मेहनत के बाद भी गधों के लिए ताने उलाने और उपहास है। लेकिन गधा मालिक रामधन अपने इस जानवर पर अभिभूत है।
इंसान है ना, इंसान उनसे ज्यादा समझता है। अभी बाबू जी देखो, कोई सांवटा ले ले तो खरीद कौन है? दूसरी बात, कदर कौन है जानवर की? कदर भी होनी चाहिए, कमार दे चाहिए, ये गंजा के सिर में बाल ले दे चाहिए जानवर, बचे पेट में भूख हो रहे और कमार दे चाहे फिर चारों घेरो या चाहे मत घेरो।
गधा मालिक अपने इस चौपाये से बहुत प्यार करते हैं, वे उन्हें फिल्मी सितारों के नाम से पुकारते हैं। गधा मालिक गणेश कहते हैं,
अलग अलग नाम रखते थे भाई, उसको नहीं उसको लेके आओ, सलमान खान को लाओ, फिरोज खान को लाओ, ये अलग अलग नाम रखते थे हम। हाँ, ये तो अलग अलग नाम रखते हैं ना, कोई हेमा मालिनी है, कोई सदारी का है, कोई गोविंदा, ऐसे अलग अलग नाम रखते थे हम। मिंडाकनी है, हर एक चीज़ का, हर उस हिसाब से जो उनको बोलते कि भाई इस वाले को लेकर आओ तो उसको आवाज़ देते तो पास में आ जाता था, कि धर्मेंद्र को लेकर आओ तो वो अपने आप आ जाता, आवाज़ देते आओ 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 धर्मेंद्र तो वो आ जाता था। बेकदरी देख के हमको दुख हो रहा है।
यूं तो नेता और मंत्री उद्घाटन समारोह के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन गधों के मेले का नाम आते ही मंत्री पीछे हट जाते हैं। मेले के आयोजकों ने कई मंत्रियों की फेरी लगाई मगर कोई भी तैयार नहीं हुआ। आयोजक उमेश सिंह राजावत व्यथित होकर कहते हैं,
गधों का यूज कम हो गया तो इसलिए गधे हो गए कम। यहाँ कोई भी मंत्री नहीं आता उद्घाटन के लिए, तो गधे दुखियों के भगवान से प्रार्थना की कि है ना जो यहाँ अगले जन्म में हमें या तो गधे बना वो घोड़े बनाना या मंत्री बनाना, तो कुछ तो मंत्री बन गए कुछ घोड़े बन गए, टालम टोल कर देते इसलिए फिर वो आते नहीं। वैसे भी मजाक भी बनती है मतलब, तो उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, कुछ घोड़े हो गए कुछ मंत्री हो गए।
घोड़ों की इस भीड़ में गधे खोए खोए से खड़े थे, उन्हें वो दौर भी याद है जब चारों तरफ गधे ही गधे दिखते थे। अब गधे भी शायद पूछ रहे हैं कि जब देश में इतना विकास हुआ है तो उनका स्थान कहाँ है। नारायण बारेठ, लूनियावास, जयपुर, राजस्थान।
ये सिर्फ नारायण बारेठ ही कर सकते हैं। बहरहाल अब बात खेल की। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत ने न्यूजीलैंड को पहली पारी में 299 रनों पर सिमेट दिया। भारत की कुल बढ़त अब 276 रन की हो चुकी है। अब तक एक खेल को लेकर हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन से बात की।
नहीं सर, एक ही तरफ से लिए एक तरफ से जहां पेवलियन एंड है उधर से ज्यादा रफ है क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का रफ क्रिएट हुआ है इधर से।
ये शब्द हैं भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन के, जिनकी घूमती और कभी कभी सीधी रहती गेंदों के सामने इंदौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी 299 रनों पर सिमट गई। आर अश्विन ने 81 रन देकर 6 और रविंद्र जडेजा ने 80 रन देकर 2 विकेट झटके। खेल के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 557 रन के स्कोर पर समाप्त घोषित की थी। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 258 रनों की बढ़त मिली। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल ने 72 और उनके जोड़ीदार टॉम लैथम ने 53 रन बनाए। इसके अलावा जेम्स निशाम ने भी 71 रनों की दमदार पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आर अश्विन ने बताया कि कैसे न्यूजीलैंड भारत के जाल में फंसा।
हमारा प्लान बहुत सिंपल था, रन नहीं देना है, बाउंड्रीज कितना भी कट करना है उतना अच्छा है। दिस आउटफील्ड इज़ वेरी क्विक, बाउंड्रीज गो वेरी वेरी फास्ट एंड सुबह पहला सेशन में वही हुआ था एंड लेथम और गप्टिल अच्छा बैटिंग किया था। सो वी थॉट वील ट्राई एंड रिड्यूस द रन रेट एंड ट्राई एंड क्रिएट सम प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मेड इन ओवर्स एंड दैट वाज द प्लान। गुड स्पेल आफ्टर लंच आई गॉट गोइंग एंड देन थिंग्स चेंज्ड।
वैसे 258 रनों की बढ़त के बाद भारत चाहता तो न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन देने के बाद उसे दोबारा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतार सकता था, लेकिन भारत के कप्तान विराट कोहली ने अपने गेंदबाजों को आराम देना उचित समझा। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय दूसरी पारी में भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 18 रन था। आर अश्विन से पत्रकारों ने पूछा, क्या मुरली विजय और रोहित शर्मा गेंदबाजी करते तो न्यूजीलैंड को फॉलो दिया जा सकता था? हाजिर जवाब आर अश्विन ने कहा,
विजय और रोहित बोलिंग डालना प्रिपेयर्ड नहीं था सर, सो हमें वापस खेलना ही पड़ा था क्योंकि जड्डू और मैंने ऑलमोस्ट 30-30 ओवर्स डाला था, वो विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एनफोर्स द फॉलो एंड सो वी हैड टू बैट एंड देयर इज मोर टाइम इन द गेम सो इट मेड सेंस टू बैट।
वैसे आर अश्विन मौजूदा सीरीज में अभी तक 16 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पिछले वेस्टइंडीज दौरे में तो 2 शतक भी ठोके थे। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि पिछले समय से भारत को एक ऑलराउंडर की कमी बुरी तरह खल रही है तो उनका ऐसा जवाब आना लाजमी था।
जब मैं डेब्यू किया उस टाइम से ऑलराउंडर ही हूं, आप लोग अभी नोटिस कर रहे हो।
अब भारत के पास 276 रनों की बढ़त है और 10 विकेट भी। 2 दिनों का खेल बाकी है, अब देखना है कि न्यूजीलैंड भारत के कसते शिकंजे को कितना ढीला कर पाता है।
ये थे आदेश कुमार गुप्त और हम आपको इंदौर टेस्ट की बात तो करार सुना रहे थे, लेकिन अतुल वासन से जो बातचीत की मैंने बात कही थी वो हम आपको अगले कार्यक्रम में सुनवाएंगे जरूर। और अब वक्त हो चुका है प्रमुख समाचारों का।
बीबीसी समाचार। सऊदी अरब ने निजी तौर पर माना है कि शनिवार को यमन में एक जनाजे पर उसकी गठबंधन सेना के एक विमान ने बमबारी की थी। इस हमले में 140 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कोलंबिया की सरकार और देश के सबसे बड़े बागी गुट नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी ELN ने ऐलान किया है कि इस महीने के आखिर में वो शांति वार्ता शुरू करेंगे। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सबसे वरिष्ठ सांसद और निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष पॉल रायन ने कहा है कि वो राष्ट्रपति पद के पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन और बचाव अब नहीं करेंगे। बेहद गुस्से की अवस्था में कड़ा व्यायाम करना जानलेवा साबित हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध में ये बात सामने आई। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने, और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।